हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। करण का मोबाइल फोन रिंग हुआ और उसने एक नज़र शिविका की तरफ देखा। वो अपने काम में बिजी थी और उसका ध्यान इस वक्त शायद करण की तरफ नहीं गया, इसीलिए करण भी चुपचाप उसके ऑफिस से बाहर निकल आया। बाहर आकर वो एकदम साइड में जाते हुए फोन कॉल रिसीव करने लगा और धीमी आवाज में बोला, क्या है, क्यों इस वक्त कॉल कर रहे हो? मैंने मना किया था ना, इस वक्त मैं ऑफिस में होता हूँ। दूसरी तरफ से जो कुछ आवाज़ आई वो सुनाई नहीं दी, क्योंकि मोबाइल फोन स्पीकर पर नहीं था। और तभी करण ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं पहले भी मना कर चुका हूँ और आज मैं उसे पूरा सच बता दूंगा, किसी भी कीमत पर। करण उस कॉल पर बात कर ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो एकदम ही चौंक गया, इतना ज़्यादा कि उसके हाथ से उसका मोबाइल फ़ोन भी लगभग छूटकर गिरने ही वाला था, जिसे कि उसने पकड़ लिया और फिर पीछे की तरफ देखते हुए बोला, कौन है, क्या है निधि, तुम्हें इस तरह से यहाँ पर मेरे पीछे क्यों आई हो तुम? करण थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोला, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि निधि ने आखिर उसकी कितनी बात सुनी होगी और वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी कॉल पर बात सुने, इसीलिए वो यहाँ पर इतनी साइड में आया था जहाँ कोई नहीं था। करण के इस तरह से गुस्से में बोलने पर निधि ने तुरंत ही उसके कंधे पर से अपना हाथ हटा लिया और थोड़ा सा अटकते हुए बोली, वो मैं तुम्हें ढूंढने, मेरा मतलब है मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। कभी तो बिना किसी हेल्प के खुद से भी अपना काम कर लिया करो, जब देखो तब हेल्प चाहिए, मैं अपना काम करूं या तुम लोगों की हेल्प करता रहूं? करण ने थोड़े से गुस्से में और तेज आवाज में निधि पर चिल्लाते हुए कहा। निधि ने कभी भी करण को इस तरह से गुस्से में नहीं देखा था और वो हमेशा ही सबकी हेल्प कर देता था, इसीलिए तो वो उसको इतना पसंद था। लेकिन अभी उसके इस तरह से चिल्लाने पर निधि थोड़ा सा सहम गई और अपनी जगह से पीछे होते हुए बोली, नहीं हेल्प करनी तो सीधे मना भी कर सकते हो, इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करती हूँ। इतना बोलकर वो तुरंत ही पैर पटकती हुई गुस्से में वहां से चली गई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी करण के इस तरह से गुस्से में चिल्लाने की उम्मीद नहीं थी और ना ही वो ये सब सुनना चाहती थी। लेकिन अभी उसे ये सोचकर ठीक लग रहा था कि चलो वहां पर इस वक्त उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था, नहीं तो ऑफिस के और लोग अगर इस तरह से करण को उसकर चिल्लाते देखते तो बाद में सब निधि का ही मजाक उड़ाते। निधि के इस तरह से जाने पर करण भी उसके पीछे ही जाना चाहता था, लेकिन एक पल के लिए वो वहां पर ही रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए खुद का गुस्सा कंट्रोल किया और फिर एकदम नॉर्मल वहां पर आकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसी दिन शाम का वक्त, शिविका और करण एक साथ ही घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके पापा वहां पर हॉल में अपनी व्हीलचेयर पर बहुत ही ज्यादा मायूस होकर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू भी शिविका को साफ नजर आ रहे थे। शिविका ने अपने पापा को ऐसे देखा तो वो तुरंत ही उनकी तरफ आईं और करण भी उसी तरफ ही आ गया। शिविका ने अपने पापा के सामने बैठकर उनका हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं, कहीं ज्यादा दर्द हो रहा है क्या, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है आपको, बताइए हम हॉस्पिटल चलते हैं। शिविका के इस तरह से पूछने पर उसके पापा ने कहा, नहीं बेटा मैं ठीक हूँ और ये दर्द तो हमेशा का ही है, ये इतनी तकलीफ नहीं देता जितना और बाकी सारी चीज देती हैं। अपने पापा की ये बात सुनकर शिविका ने थोड़ा सा कंफ्यूज होकर करण की तरफ एक नज़र देखा और वो पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था। उन दोनों की नज़रें मिली लेकिन उन्हें शिविका के पापा की बात का मतलब समझ नहीं आया। करण भी शिविका के बराबर से उनके सामने बैठता हुआ बोला, पापा क्या बात है, आप हमें बताइए ना, जो भी प्रॉब्लम है हम मिलकर कोई सोल्यूशन निकालते हैं। इतना बोलते हुए करण ने उनकी तरफ देखा तो शिविका के पापा ने कहा, नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोग परेशान मत हो, वो तो मैं बस ऋषभ के बारे में सोच रहा था, वही है मेरे सारे दर्द और तकलीफों की वजह। इतना बोलते हुए बहुत ही मायूसी भरी एक ठंडी सांस उन्होंने छोड़ी तो शिविका ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, पापा आप उसके बारे में मत सोचिए, वो तो है ही नालायक, लेकिन आज नहीं तो कल उसे भी अकला ही जाएगी, आखिर कब तक ऐसे ही रहेगा वो। अरे नहीं बेटा, वो अब तक घर वापस नहीं आया है, मुझे लगता है इस बार शायद कुछ ज्यादा ही नाराज होकर चला गया, मेरी ही गलती है शायद, मुझे उसे बार बार एक ही बात नहीं बोलना चाहिए था, और अगर वो वापस नहीं आया तो? ये बात बोलते हुए शिविका के पापा की आंखों में पहली बार ही एक डर नजर आ रहा था, वो भी ऋषभ को लेकर, नहीं तो आज से पहले वो हमेशा ऋषभ को लेकर एकदम ही लापरवाह बर्ताव करते थे और उसकी इतनी ज्यादा कोई फिक्र भी नहीं करते थे। शिविका के पापा की बात सुनकर करण को भी ऋषभ को लेकर थोड़ी सी टेंशन हुई, लेकिन वहीं शिविका काफी चिल अंदाज में बोली, वो आ जाएगा पापा कुछ देर में, आज नहीं तो कल सुबह तक, आप क्यों उसे लेकर परेशान हो रहे हैं, आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता ऋषभ के लिए फिक्र करना, आप मेरी, करण की और काव्या की ही फिक्र किया करो, हम लोग वैसे भी आपको इतना स्ट्रेस नहीं देते हैं ना। इतना बोलकर शिविका अपने पापा की तरफ देखकर मुस्कुराई तो उसके पापा भी उसकी तरफ देखकर ही मुस्कुराने लगे और कुछ ही देर बाद काव्या भी वहां पर दौड़ती हुई आ गई और नाना नाना करते हुए उनके गोद में ही बैठ गई। उनके हाथ अभी ठीक हैं, तो उन्होंने भी काव्या को उठाकर अपने पैरों पर ही बिठा लिया और करण भी उनके पास ही बैठा रहा। शिविका उन सब लोगों की तरफ बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रही है और उसे इसी तरह हंसती खेलती एक साथ अपनी फैमिली को देखना पसंद है। ऋषभ की कमी उसे भी खल रही है, इसीलिए साइड में जाकर उसने सबसे पहले ऋषभ का नंबर डायल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था और वो समझ गई कि या तो फोन वो अपने साथ लेकर नहीं गया होगा या फिर उसका फोन चार्ज ही नहीं होगा और ऐसे ही बैग में कहीं पड़ा होगा, क्योंकि वो फोन का इतना भी ध्यान नहीं रखता। उसे पसंद नहीं है कि जब वो इधर उधर रहे तो कोई उसे डिस्टर्ब करे और वो भी जल्दी घर पर या किसी को भी इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझता। उसी दिन रात का वक्त, शिविका इस वक्त काव्या के साथ उसके रूम में थी। काव्या जिद कर रही थी उसके साथ ही सोने की, तो डिनर करने के बाद वो वहां पर ही चली गई थी, लेकिन करण ने कहा कि उसका कुछ काम बाकी है तो वो कमरे में जाकर पहले अपना काम निपटा लेता है। शिविका ने ओके कहा और करण अपने रूम में वापस आ गया। रूम में आने के बाद करण ने अपना बैग साइड में रखा और फिर से वो पूरे कमरे में इस तरह से कुछ ढूंढने लगा जो कि वो पिछली रात भी ढूंढ रहा था और आज सुबह भी, लेकिन शिविका ने इतना ध्यान नहीं दिया और वो उसके सामने ढूंढना भी नहीं चाहता था। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चीज करण के लिए बहुत ही जरूरी है, जैसे कि उसके जीने मरने का सवाल हो। हड़बड़ाहट में उसने अलमारी में रखे हुए सारे कपड़े और सामान उलझा दिए, यहां तक कि कुछ सामान तो अलमारी से बाहर जमीन पर भी गिर गया। उसने अलमारी बंद तक नहीं की और बेड के पास आकर बैठकर दोनों साइड पर लगे हुए ड्रॉर खोलकर उसमें भी ढूंढने लगा। उसने अपना बैग चेक किया और बैग का सारा सामान वहां बेड पर ही बिखेर दिया। करण ने एकदम ही अपना सिर पकड़ लिया और वहीं फैले हुए सामान के बीच ही बेड पर धम से बैठ गया।
पता नहीं कहां गया, मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने यहां पर अलमारी में ही रखा था और वो भी अपनी साइड पर। मुझे अच्छी तरह से याद है, तीन दिन पहले ही मैंने देखा था, लेकिन उसके बाद से मुझे नहीं मिल रहा है। इतना बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रखकर आंख बंद कर ली और तभी उसे कुछ हल्की सी आवाज़ हुई और उसने अपनी आंख खोली तो उसकी आंखों के सामने कुछ पेपर थे जो कि किसी ने पकड़े हुए थे। उसका हाथ जैसे ही करण को नजर आया, उसने एकदम ही झटके से अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा और वो कुछ बोलते ही वाला था कि उससे पहले ही शिविका बोल पड़ी, ये लो, यही ढूंढ रहे हो ना तुम इतनी देर से, या फिर ये कहूं कि पिछले दो दिनों से। शिविका की ये बात सुनकर करण को जैसे एकदम ही सदमा लगा और वो कुछ बोल ही नहीं पाया। अपनी सफाई में उसके दिमाग में जैसे कुछ आ ही नहीं रहा और ना ही मुंह से शब्द निकल रहे हैं। इसके अलावा वो उन पेपर्स को देखकर पहचान गया, लेकिन फिर भी उसके हाथ से वो पेपर ले नहीं पाया। करण को इस तरह चुपचाप सदमे में अपनी तरफ देखते हुए शिविका ने कहा, लो ना, क्या सोच रहे हो, अभी तो ढूंढ रहे थे ना इतनी देर से, रूम के हालात खराब कर दिए तुमने, देखा कितना सामान बिखरा हुआ है, मुझसे पूछ लेते एक बार। एकदम नॉर्मल आवाज में शिविका ने ये बात बोली और वो पेपर करण के हाथ में थमाकर वो साइड में पड़े हुए कपड़े और सामान जमीन से उठने लगी, जबकि करण को यकीन ही नहीं हो रहा था और वो बहुत हैरानी से शिविका की तरफ देख रहा है और फिर हाथ में पकड़े हुए अपने पेपर को। टू बी कंटिन्यूड।